Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Adhyatmik Shastra. Sansara, sansara ka hetu, asansara ka nivartak, दुख का निवर्तक। चौथा क्या है? मोक्ष। हाँ, ये अच्छे डॉक्टर की पहचान है। देखो, जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, यदि संसार से दुख मिल रहा है तो दुख का हेतु क्या है? दुख थोड़ा सा हुआ तो शुद्ध चित्त वाले को सहन नहीं होता है। सहन नहीं तो छटपटा था, ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो अन्वेषण करेगा कि दुख का हेतु क्या है। दुख का हेतु बाहर नहीं, अंदर है, ये अन्वेषण करेगा। इसलिए साधक को कह दिया कि अक्षय पात्र कल्प हो। ऐसे जो अक्षय पात्र कल्प धीर हो, वो सारा संसार को अध्रुव समझता है, अध्रुव अनित्य समझता है। आत्मा से जितने भी अतिरिक्त है, चाहे अहलौकिक पदार्थ हो चाहे पारलौकिक पदार्थ, ये सब अध्रुव है, अनित्य अनित्य है। और ऐसे अध्रुव पदार्थ में एक ध्रुव छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। परमात्मा तो कण कण में छुपा हुआ है कि नहीं? परमात्मा के बिना, ये नित्य पदार्थ के बिना अनित्य नहीं रह सकता है ना? जैसे सुवर्ण में अलंकार का नाम और अलंकार का रूप छुपा है, ये जो है कल्पित है, कल्पित है। सुवर्ण का नाम और सुवर्ण का रूप, ये हो गया अध्रुव, ये तो आने जाने वाला है। लेकिन ध्रुव जो सुवर्ण है, ये आने जाने वाला नहीं है। कल आप लोगों को बताया कि सुवर्ण को प्राप्त करना है तो गलाना नहीं पड़ेगा, अलंकार को गलाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मोह छोड़ना पड़ेगा कि अलंकार का नाम और अलंकार का रूप, ये तो कल्पित है, कल्पित, ये आने जाने वाला है। सुवर्ण का ज्ञान करना चाहिए। सुवर्ण है ध्रुव, इसी प्रकार जो परमात्मा है कण कण में छुपा है, उसको समझना चाहिए। ध्रुव शांति को यदि प्राप्त करनी है तो ध्रुव का आश्रय लेना होगा कि नहीं? और अध्रुव जो अनित्य का आश्रय लेंगे और नित्य की प्राप्ति हो, ये नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति है धीर, वो क्या करता है? अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम, ये जो अमृतत्व है ना, अमृतत्व, हाँ, अपने स्वरूप में ही अमृतत्व है, बाहर नहीं है, हो गया ना। इसमें महात्मा लोग सुनाते हैं, महात्मा लोग तो एक बार क्या हुआ कि नारा जी तो भ्रमण करते रहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, और लोगों से पूछते रहते हैं, भाई तुम्हारा क्या दुख है, दुख का निवारण हम करेंगे। तो संत को दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है, ये पूछते रहते हैं नारद जी। तो एक बार जो सर्पों ने कहा कि महाराज हमको बहुत दुख है, सर्प क्या दुख है जी बताओ? ऐसा है कि रात में तो अंधेरा रहता है, तो आहार के लिए तो हमने नहीं जा सकते, और दिन में जब जाते हैं तो ये मनुष्य लोग मार देते हैं, तो आहार खोजें तो कैसे खोजें हम? रात में कुछ दिखता नहीं और दिन में मनुष्य लोग मार देते हैं। तो नारद जी ने कहा जब ऐसी बात है तो कुछ उपाय करते हैं। चले गए शेषनाग के पास विष्णु में, तो लीला करने में नारद जी को बड़ा आनंद आता है। तो शेषनाग के पास गए तो बोले, क्या तुम यहाँ पड़े रहते हो? तुम्हारे जाति भाई लोग कितने दुखी है, और तुम जो भगवान का वाहन बन करके पड़े रहते हो, आसन बन करके। तो जब जाति के बारे में कुछ बोल देना किसी को तो आवेश आ जाता है, है कि नहीं? तुम्हारे जाति में ऐसा होता है, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है। अब बोल दीजिए, देखो जल्दी किसी को आवेश कराना तो यही उपाय है, तो तुम्हारे देश में ऐसा होता है ना, और तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है। ये देखो, ये जाति, देश, धर्म और अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में बड़ा मोह होता है लोगों को। इसलिए कुछ महात्मा लोग भी होते हैं, महात्मा बनने पर भी मातृभाषा को नहीं छोड़ पा रहे, बड़ा कठिन होता है। इसलिए जो अच्छे गुरु संत लोग होते हैं, सबसे पहले अपनी भाषा को छोड़ो, तुम महात्मा को ना तुम्हारे मातृदेश में जाना है, ना तुम्हारी मातृभाषा को बोलनी है। हाँ, मोह होता है ना, तो मोह होता है भाई। तो जब ऐसा बोले नारद जी, तो आवेश आ गया शेषनाग को। अच्छा, कौन दुखी करता है, कौन कर दे बताओ। तो नारद जी ने कहा, बात ऐसी है कि सर्प लोग भाई दिन में जाते हैं तो मनुष्य लोग मार देते हैं, आहार नहीं मिलता है। तो शेषनाग ने कहा, अच्छा मनुष्य लोग ऐसा करते हैं, क्या आक्रमण करूं क्या? तो कहा, आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान के पास रहते हो, भगवान से तो प्रार्थना कर सकते हो ना। तो भगवान से तुम प्रार्थना करके मांगो, भगवान समर्थ है विष्णु जी, कोई ऐसी चीज दे देवे कि उस चीज को प्राप्त करके सर्पों को भूख प्यासी ना लगे, बात खत्म। भाई सर्पों तो बाहर जाते काहे के लिए जाते हैं, आहार ढूंढने के लिए जाते हैं, और भूख प्यासी ना लगे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो मारेंगे नहीं। तो नारद जी के बाद सबको जजती है, नारद जी ऐसे ही है, उनकी बात सबको जजती है, तो जज गई बात। तो भगवान के पास गए शेषनाग, और भगवान प्रसन्न थे उस समय, तो भगवान को पूरी बातें सुनाई। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम एक उपाय करते हैं, एक झोला दे दिया झोला, और उन्हें कहा कि झोले में मणि रखिए, मणि मणि रखिए है, और सभी मणि में एक एक बूंद अमृत है, और इसमें छिद्र है, मणि के अंदर छिद्र है, और सर्पों के जीवा तो पैनी रहती है, पतली रहती है, तो जीवा लगा करके पी ले अमृत, तो भूख प्यास नहीं लगेगी, और अमर हो जाएंगे, कोई मार भी नहीं सकता है। तो शेषनाग प्रसन्न हो गए, मणि बट गई, सर्पों ने अपने अंदर मस्तक के ऊपर मणि को धारण कर लिया सर्पों ने, और सर्पों ने सोचा, देखो दिन में हम निकलेंगे, ये मनुष्य ऐसे ही हमको ही मार देंगे, मणि भी ले जाएंगे। इसलिए जब घोर अंधकार रात्रि का समय आएगा, उस समय निकलेंगे। जब रात्रि का समय आया, बाहर निकले, मणि निकाले, और मणि जब निकाले, प्रयास थोड़ा सा कर ही रहे हैं कि अमृत पीने के लिए, और मणि का जो प्रकाश है ना, प्रकाश, ये प्रकाश में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, पतंगे, एकत्रित हो गए। अब और पतंग को देख करके उसको ही खाना ले गए सर्प, और मणि में अमृत है, और ये अमृत का ऐसा महत्व है, अमृत को पीना चाहिए, इस बात को भूल गए। कीड़े खाने लगे, अभी भी कीड़े ही खाते हैं, बस मणि का प्रयोग है ये कीड़े खाने में ही लगा दिए, अमृत का पान करने में नहीं लगा पाए। ये तो कहानी हो गई, दृष्टांत हो गया। तो हम भी सर्प की तरह है कि नहीं? हाँ, बचो तो कीड़े तो खा रहे, और क्या खा रहे है ना, ये जो अच्छे अच्छे रूप, अच्छे अच्छे रस, ये जो भोग की सामग्रियां, ये क्या है? ये कीड़े तो है, और क्या है? ये सबकी बुद्धि में है ना, तो ये बुद्धि रूपी छिद्र में ये पारस मणि, मणि मणि है, मणि साक्षी, सबकी बुद्धि में साक्षी विद्यमान है, साक्षी विद्यमान है ना, और साक्षी के अंदर आनंद, आनंद जो अमृत है वो सभी में है, देखो है ना। तो तो बुद्धि रूपी जिह्वा से साक्षी के अंदर जो अमृत है उसको यदि पान नहीं करेंगे तो भोगों में ही लगे रहेंगे। इसलिए साक्षी का उपयोग आनंद जो अमृत है उसका पान करने में नहीं लगा पाए, अपितु जो रूप और रस आदि जो छोटे छोटे कीड़े हैं वह उसको खाने में ही उसका भोग करने में ही हम लगा दिए। इसलिए यहां पर जमराज जी सावधान कराते हैं कि पहले तुम धीर बनो, अंतर्मुखी बनो, फिर अंतर्मुखी बन करके तुम विवेक कर लो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। इसलिए तुम ये भ्रांति मत करो कि अनित्य पदार्थ से नित्य अमृत की प्राप्ति होगी, ये भ्रांति है। देखो इसलिए साधक क्या करता है कि अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा, अनित्य पदार्थ में एक नित्य पदार्थ है आत्मा, और आत्मा का स्वरूप आनंद है, स्वरूप में आनंद है, बाहर आनंद नहीं है। इस बात को तुम पहले निर्धारित कर लो, बुद्धि में बैठा लो। तो बुद्धि में यदि बैठा लोगे तो फिर क्या होगा, ये कहते हैं देखो आगे, यह न प्रार्थयन्ते, संसार का कोई भी पदार्थ है चाहे यह लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, किसी से भी शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्षणिक सुख की प्राप्ति तो हो सकती है। और जिसको ये निर्धारित हो गया कि परमात्मा ही आनंद है अन्यत्र आनंद नहीं है, फिर इसका आश्रय क्यों करेगा जी, संसार का आश्रय नहीं कर सकता है। अब विचार करके देख लो कि परमात्मा के बल से युद्ध जीता जा सकता है कि परमात्मा की सेना से, है ना? इसे मान बुद्धि इंद्रिया ये अहलौकिक जो पदार्थ है ये पारलौकिक पदार्थ है, ये क्या है, परमात्मा की सेना है, सेना है। किसका आश्रय करना है, परमात्मा का आश्रय करना चाहिए कि परमात्मा की सेना का? भाई महाभारत में कौन जीता, परमात्मा का आश्रय करने वाला जीता कि परमात्मा की सेना का? हाँ, केनो उपनिषद जानते हैं ना, आत्मना बिंदते वीर्यम, साधक को जब बल प्राप्त है ना, बाहर से बल प्राप्त नहीं होता है, ये घी मलाई से बल प्राप्त साधक को नहीं होता है, ये तो शरीर का बल, जो बल वहां पर वीर्य कहा गया वो बल नहीं है, घी मलाई से होने वाला बल की बात नहीं है, अपितु आत्मा से जो बल प्राप्त होता है आत्मबल, हाँ ये परमात्मा का बल है। इसलिए साधक परमात्मा का आश्रय करता है, ये परमात्मा की सेना है, अहलौकिक पदार्थ पारलौकिक पदार्थ, इसका आश्रय नहीं करता है। इसका यदि आश्रय करते हैं तो ज्ञान का प्रतिबंधक है। इसलिए यहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि प्रत्येक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वाद, भाष्य में ये प्रत्येक आत्मा का जो दर्शन है, परमात्मा का साक्षात्कार है, ये परमात्मा का साक्षात्कार में ये प्रतिकूल प्रतिबंधक ऐसा ऐसा है ना, पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा, है ना? तो विचार करके देखना चाहिए कौन सी ऐसा भाई ज्यादा प्रतिबंधक है, सब तो है लेकिन तीनों में से ज्यादा कौन? बराबर, इन्होंने सही कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं, मैं इसीलिए तो हम कह रहे हैं, हमको तो हमारी अनुभूति में आती है कि भी सबसे ज्यादा प्रतिबंधक तो हमको यही लगता है लोकेशण। अच्छे अच्छे विरक्त भी दिखेंगे, पैसा के प्रति मोह नहीं होता है लेकिन लोकेशण बहुत होती है, हमारी पूजा करे, हमारा मान सम्मान हो, हमारा नाम हो, बाहर हमको बहुत लोग जाने, है ना? हमको तो लगता है ये सबसे ज्यादा प्रतिबंध है, है ना? तो ये यदि ऐसा है, चाहे तो पुत्रेषणा हो, चाहे वित्तेषणा हो, चाहे लोक, ये साधन है। देखो साधन मानेंगे तो कोई बात नहीं हो गए कि नहीं। ये प्रारब्ध के अनुसार ये मिल रहा है, ये हमारा साधन है, लेकिन इसी से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं है, हो गया ना, अंतर है। इसलिए यहां पर जमराज जी बोलते हैं कि यह मतलब संसार में न प्रार्थयन्ते, किसी प्रकार के जो है भोग की इच्छा वो साधक नहीं करता है। तो ठीक है, इस संसार में जो अनित्य में जो नित्य पदार्थ छुपा है परमात्मा, उसी का ही आश्रय करता है, उसी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो ये जो परमात्मा है जिसका स्वरूप नित्य अमृत है, भाई उसका ज्ञान कैसे होगा? परोक्ष रूप से होगा कि अपरोक्ष रूप से होगा? जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में राजा है, तो किसने देखा भाई? जब जाएगा तब देखेगा, अभी तो देखा नहीं है। तो स्वर्ग आदि, स्वर्ग में राजा, पाप पुण्य ये जैसे परोक्ष है, वैदिक परोक्ष है, शास्त्र अधिगम्य है, ऐसा का परमात्मा परोक्ष होता हो जिसका स्वरूप आनंद है, अमृत है, कहते हैं ऐसा नहीं। ये जो परमात्मा है ना, ये साक्षात अपरोक्ष है। ये साक्षात अपरोक्ष की बात आगे कहने जा रहे हैं। यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। अपरोक्ष भी दो प्रकार के हैं। एक तो अपरोक्ष है केवल, और दूसरा है साक्षात अपरोक्ष है। दोनों में क्या अंतर है जी? इंद्रियादि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अधिगम होता है वो तो केवल अपरोक्ष हो गया, है ना? तो जिसको जानने के लिए इंद्रियों की अपेक्षा होती है वो तो केवल अपरोक्ष हो गया, प्रत्यक्ष को अपरोक्ष को। लेकिन जिसका ज्ञान इंद्रिय के बिना भी होता है, हो गया ना, उसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। दोनों में अंतर है। इसलिए आत्मा का जो अपरोक्ष होता है, साक्षात अपरोक्ष है, उसको जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकरण आगे का है। देखिए येन रूपं रसं गंधं शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनात् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैत। पहले पूछा था नचिकेता ने, भाई शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है, जिसके बारे में देवताओं को भी बड़े बड़े लोगों को भी संशय होता है, यही प्रश्न था पहले प्रथम अध्याय में। उसी का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है कि हे नचिकेता, जिसके बारे में तुम्हारी जिज्ञासा है, जिसके विषय में बड़े बड़े लोगों को संशय होता है, वो यही है। क्या है? कहते ये न, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ऐसा एक पदार्थ है जिस पदार्थ से ये व्यक्ति सबको जानता है। क्या का जाना जाता है जी? रूप भी जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो विचार करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक पदार्थ का ज्ञान के साथ साथ दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अलंकार का ज्ञान के साथ साथ सुवर्ण का भी ज्ञान हो जाता है, क्या नहीं होता है जी? है भाई, अभी दीपावली आएगी, ये चीनी से तमाम प्रकार की मूर्तियां बनती है, गणेश की मूर्ति, चूहे की मूर्ति, देवता की मूर्ति, है ना? तो जो बेचने वाला है देखो, उनसे मांगो भाई, तो गणेश एक किलो दे दो तो वजन करके दे देगा, देगा कि नहीं? और चूहे भी एक किलो दे दो तो दे देगा। अब विचार करो, उनको गणेश का ज्ञान, चूहे का ज्ञान है कि नहीं? भाई ज्ञान यदि नहीं तो कैसे देगा वो? ज्ञान है ना, है ना? आज दोनों की कीमत एक ही है। अब बच्चा बोला दोनों की कीमत एक ही कैसे? इसका मतलब दोनों चीनी से भिन्न नहीं है, उनके लिए चीनी की कीमत है बेचने वाले के लिए, हो गया ना। उनको दो ज्ञान है, देखो दो ज्ञान, बेचने वाले को चीनी का भी ज्ञान होता है और गणेश चूहे का भी ज्ञान होता है, हो गया ना भाई। इसी पे अगर जो ज्ञानी महापुरुष होता है ना, उनको दोनों का ज्ञान होता है। एक आत्मरूप जो पर्दा है उसका भी ज्ञान होता है, जो चीनी जो अधिष्ठान है उसका भी ज्ञान होता है, और दाल रोटी का भी ज्ञान होता है। कहने का भी है ना, ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद जो है चावल चावल पहले खा लेगा, दाल सब्जी को बाद में खाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, ये ज्ञान का फल नहीं होता है। कोई के बोलते हैं मैं ट्रेन में जाते हैं कि स्वामी जी हाथ थोड़ा देख दो, ट्रेन में जाते हैं, बोले हम इस समय को नहीं आता, तो क्या महात्मा फिर? हाथ भी देखना नहीं आता, महात्मा क्या है? उनको भिक्षा भी नहीं मिलती आजकल, ऐसा ही हो गया है। ये लोग कथा प्रबंध करते मिल जाता है, तो नहीं करते उनको बड़ा मुश्किल। ये वास्तविकता है, देखो ये ज्ञान का फल नहीं होता है ना भाई। कोई पूछे ये बताओ भाई, रावण के नानी की नानी की नानी का नाम क्या है, तो कौन सा ज्ञानी बताएगा? ये जरूरी है कि ज्ञान होने के बाद बतावे? ये ज्ञान का फल नहीं होता, ये तो जोगी भी बता सकता है। कोई तंत्र की साधना किया वो भी बता सकता है, तो ये ज्ञान का फल नहीं है, है ना। तो क्या कह रहे हम कि कभी कभी एक पदार्थ के ज्ञान के साथ साथ दूसरे पदार्थ के ज्ञान हो जाता है। जैसे आप रूप, आप जो है पुस्तक को देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, तो जिस समय आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, चक्षु का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया ना, चक्षु का भी ज्ञान हो रहा है। तो जिस समय आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, उस समय जैसे रूप का संशय नहीं हो रहा है, तो चक्षु का भी संशय है क्या? जिस समय आप देख रहे हैं चक्षु से, चक्षु है कि नहीं है, संशय नहीं होता है ना। लेकिन पुस्तक को जैसे साफ सामने रखते हैं, ऐसे चक्षु को देखने के लिए सामने रखने की कोई जरूरत नहीं है। पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ चक्षु का भी ज्ञान हो जाता है, और चक्षु के ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष नहीं है। ये देखो वेदांत के अनुसार, तार्किक के अनुसार तो चक्षुरादि अनुमेय है, कि वेदांत के अनुसार ये चक्षुरादि कैसे है? प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। मन को अनुमेय मानते तार्किक जो, लेकिन मन कैसा है? प्रत्यक्ष है। देखो हो गया ना, वही तो कह रहा हूं भाई, सामने होने से ही प्रत्यक्ष होता, ऐसी बात नहीं है। सामने न होने पर ही प्रत्यक्ष होता है। भाई मेरा मन है कि नहीं है, आपको संशय होता है क्या? नहीं होता है ना। वही तो कहना भैया, जिस पदार्थ में रूप हो उसी का ही प्रत्यक्ष होगा, ये कोई जरूरत नहीं है। देखो पुस्तक में रूप है, प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन चक्षु में कोई रूप नहीं है, मन में कोई रूप नहीं है। रूप होने पर ही प्रत्यक्ष होगा, ये कोई जरूरत नहीं है। पकड़ में आया भैया? ऐसा यदि मानेंगे तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा, फिर आत्मा में कोई रूप ही नहीं है, है? परोक्ष हो रहा है। अभी जो जीवात्मा है इसकी बात कह रहा हूं भाई, परमात्मा जोड़े। अभी जो विशिष्ट जीवात्मा है, ये प्रत्यक्ष है कि जो है भाई परोक्ष है? प्रत्यक्ष है। बाकी बात रहे कि इसमें आवरण है, इसलिए आपको जो है विशिष्ट निर्विशेष आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं, वो बात अलग है। अभी जिसको आप मैं समझ रहे हैं, वो जो अहम अर्थ है, वाच्यार्थ विशिष्ट, वो तो प्रत्यक्ष है ना, है ना। एक कोई जरूर नहीं है रूपादि गुण हो तब तो जाकर के प्रत्यक्ष हो, ये बात नहीं है, है ना। तो जैसे देखो पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ जैसे चक्षु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से अनात्मा पदार्थ के साथ साथ आत्मा का भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। अगर साथ ही साथ करना है देखो, है ना। जैसे मान लो दृष्टांत के आधार पर जिस समय बल्ब का प्रकाश दिख रहा है, फिर विद्युत का ज्ञान होता है कि नहीं? वहां तो परोक्ष है, दृष्टांत में यहां पर परोक्ष है, हो गया ना। लेकिन आपको विद्युत को जानने के लिए प्रकाश से ही जाना होगा। देखो प्रकाश के माध्यम से ही उसको जानेंगे, है सच में। चित्र के माध्यम से ही पर्दे का ज्ञान करना है, तो ज्ञान करना है भाई जागृत में ज्ञान करना है कि स्वप्न में सुसुप्ति में, जागृत में ही करना है। और जब भी आंख खोलोगे यही रूप ही दिखाई देगा, फिर आत्मा को कैसे जानेंगे, ऐसे ही जाना जाएगा। आगे सच में यही प्रक्रिया यहां पर, जिस समय रूप का ज्ञान हो रहा है उसी समय जिस आत्मा से रूप का ज्ञान हो रहा है, कभी रूप बदल रहा है कभी रस बदल रहा है ना, ये जब ये दृश्य बदलते जाते हैं, लेकिन रूप आदि दर्श दृश्य को जानने वाला वो तो एक ही है, वो आने वाला जाने वाला नहीं है। तो जिसके चैतन्य से सारे रूप आदि दृश्य जाने जाते हैं वो मेरा स्वरूप है ना। ये यहाँ पर प्रक्रिया है, बहुत सुंदर प्रक्रिया है, इसका विचार कल करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।